आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मृणाल पांडे की कहानी लड़कियां, प्रीति सागर की आवाज में।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंद युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
जिस दिन हम लोग माँ के साथ नानी के घर रवाना हुए, बाबू ने एक सुराही फोड़ी थी। पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में, पचाक, तमाम पानी ही पानी कमरे में फैल गया था। माँ ने धोती ऊपर कर पैर रखते हुए दूसरे कमरे से कान लगाए सुन रही सरू की माँ से कहा था कि जरा पोछा ले आए, तमाम पानी ही पानी हो गया है। और उनके पीछे पैर वैर रपट कर किसी की हड्डी पसली चटक गई तो एक और मुसीबत। माँ को वैसे भी हर चीज के अंत में मुसीबत ही नजर आती थी। हम लोग घर में होते तो मुसीबत, स्कूल में होते तो मुसीबत, बीमार होते तो मुसीबत, भले चंगे उछलते कूदते होते तो मुसीबत। पोछा लगाती सरू की माँ ने सिर तनिक टेढ़ा करके माँ से पूछा था कि इस फेरे तो 3-1 महीने रहोगी ही रहोगी ना। माँ ने, जैसा कि इन दोनों उसकी आदत हो गई थी, जांघों पर हाथ रखकर वजन तोला और कांख कर बैठते हुए कहा कि हाँ, उससे पहले वे लोग आने देंगे थोड़े ही ना, जा बाहर खेल। यह अंतिम आदेश मेरे लिए था, जो हमेशा की तरह हर गलत मौके पर हैरतअंगेज ढंग से किसी कोने में हाजिर पाई जाती थी। कमरे से टूटी सुराही का एक टुकड़ा चूसने के लिए सफाई से उड़ाकर ले जाते मैंने सुना कि माँ, सरू की माँ, या जाले लगी छत से कह रही थी कि इस बार लड़का हो जाता तो उन्हें छुट्टी होती, बार बार की मुसीबत। सरू की माँ ने हमेशा की तरह सिर हिला हिला कर जरूर कहा होगा, क्यों नहीं क्यों नहीं। ट्रेन में मैंने लड़ झगड़ कर खिड़की के पास की सीट हथिया ली थी और फिर दूसरों को जीभ बिराई ई। माँ की नजर अपनी ओर घूमती पाकर मैंने हिल हिल कर जपा ई से इमली, ई से ईख, पर माँ का ध्यान इस वक्त मुझ पर नहीं टिका। उस पर इस वक्त कई मुसीबतें थीं, बिखरा जाता सामान, डगमगाती सुराही, थकान, हम तीनों। एक स्टेशन पर खूब मिर्ची के समोसे खरीदे, तभी एक औरत ने बगल की खिड़की से अपने बच्चे को सूसू कराई। मारे घिन के मुझसे समोसा नहीं खाया गया, मैंने माँ को दिया। उबले आलू का एक टुकड़ा सीट पर पड़ा था, उसे मसल कर जूजू कीड़ा बनाकर कुछ देर छोटी बहन को डराया, वह चीखी। माँ ने चिकोटी काटी, मैं रोई। बड़ी बहन ने तब उकता कर कहा, क्या मुसीबत है। बड़ी बहन ज्यादा प्यार करती है, सिर्फ बही, बाकी सब गंदे हैं। स्टेशन पर मामा लेने आए, मैं मामी की बगल में बैठी। मामी पान चबाती थीं तो उनके कान की लवों पर माणिक के बुंदे ऊपर नीचे होते थे। ड्राइवर जितनी बार जीप का हॉर्न बजाता, हम तीनों बहनें मिलकर चीखती पो। ड्राइवर हंसा। घर पहुंचकर उसने मुझे और छोटी बहन को गोदी में लेकर जीप से उतारा। उससे चाय और बीड़ी की महक आती थी। उसकी मूछें बड़ी बड़ी थीं और उसकी वर्दी का गर्म कपड़ा चुभता था। नींद आती थी। उतारने में सुराही फिर लुढ़क गई, पानी फैल गया। मुझे बाबू की याद आई और मैंने छोटी बहन की चप्पल को ऐसे दबाया कि वह गिरते गिरते बची। मुसीबत की जड़, माँ ने दांत भींचकर ऐसे कहा कि कोई और न सुने, और मुझे हाथ से पकड़कर औरों को ऐसे दिखाया जैसे मुझे संभाला हो, पर सचमुच में इतनी जोर से भींचा कि कंधा दुख गया। मुझे बाबू की याद आई। नानी के घर आने में हमेशा यही होता है, बाबू तो साथ आते नहीं, और यहाँ आते ही माँ भी मौसियों, मामियों, नानी और पुरानी नौकरानियों के बीच एकदम ही गुड़ुप। दिन में उसके पास भी जाना चाहें तो कोई ना कोई टोक देता है, यहाँ तो बेचारी को आराम करने दो। माँ भी कैसा बेचारी वाला चेहरा बना लेती है, जैसे वहाँ हम लोग उसे काट खाते हों। धत, नानी के घर में घुसने से चिढ़ होने लगी। मैं झाड़ियों के पास जानबूझकर ठिठकी। झबरा कुत्ता आया, उसने मुझे सूंघा। तभी भीतर से किसी ने मेरा नाम लेकर कहा, वह फिर कहाँ रह गई। मैं और कुत्ता साथ साथ घर में घुसे। नानी मामा के लड़के को गोद में लिए बैठी थीं। انہوں نے کتے کو دودکارا۔ وہ جانوروں کی چھوت مانتی تھیں۔ کتا پونچھ نیچی کر نکل گیا۔ اسے دودکارے جانے کی عادت تھی۔ مجھ سے کہا کہ پیر چھوو، ایسے نہیں ایسے۔ ارے لڑکی کا جنم ہے اور زندگی بھر جھکنا ہے تو سیکھ ہی لو۔ نانی نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ نہیں بڑی لمبائی میں تنک بھی، آٹھ کی کون کہے گا اسے۔ میں نے ماما کے لڑکے کو چکوٹی بھر لی۔ بہ بے وقوف سا تب بھی میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، گورا گورا پیارا سا۔ وہ عمر کے لحاظ سے لمبا جا رہا تھا، پانچ کا تھا سات کا لگتا۔ کہانی سنائے گی رات کو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا اور جھوٹ موٹ اخبار پڑھنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، ماں کہہ رہی تھی اور پڑوسن نانی کہہ رہی تھی کہ للی کی ماں، اس بار تو للی کے لڑکا ہی ہوگا، چہرہ دیکھو کیسا پیلا پڑ گیا ہے للی کا، لڑکیوں کی بیر کیسی سرخ گلاب لگتی تھی۔ کیا پتا اس بار بھی، ماں نے کہا اور بیچاری والا چہرہ بنا کر ناخون کھونٹنے لگی۔ وہاں روٹی پانی کو کوئی ہے تیرے کرتا کے؟ پڑوسن نانی پوچھ رہی تھیں۔ مجھے بابو کی بہت یاد آئی۔ بابو سے کتنی صاف خوشبو آتی تھی نا، ان کی گود گلگلی تھی۔ ماں ادھر زیادہ دیر گود میں نہیں لیٹنے دیتی، کہتی ہیں اف ہانٹے ماٹے ایک کر ڈالے، ساڑی مسڑ دی سو الگ، اب اٹھ بھی، ڈھیروں کام پڑا ہے میرا، اوپر سے یہ مصیبت اور، اٹھ۔ نانی اوپر کو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں ہے دیوی میری لاج رکھنا، اس بار یہ مائکے سے بیٹا لے کر جائے۔ پھر وہ آنکھیں پوچھتی ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے بہنوں کو دیکھا، وہ سو گئی تھیں۔ جہاں ہم سوئے تھے وہاں کاٹ کی دیوار سے بڑے سے کمرے کے بیچ میں دو حصے کیے گئے تھے۔ جہاں میرا تخت تھا اس کے ٹھیک اوپر ایک بڑی دیوال گھڑی ٹک ٹک کرتی تھی۔ گھنٹے بجانے سے پہلے اس میں ایک گہری سرسری آواز آتی تھی، جیسے چھوٹی بہن بکا پھاڑ کر رونے سے پہلے اوپر سانس کھینچتی ہے۔ سب بتیاں بند ہیں، کمرے میں بس چاند کا اجالا ہے۔ تلسا دائی ماں کے تلووں میں تیل ٹھونک رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس بار لڑکا ہوگا تو اسٹینلیس اسٹیل کی جری والی ساڑی لوں گی۔ ہاں، چاندنی میں ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا، بس ڈھول جیسا پیٹ دیکھتا ہے۔ ماں کی ساڑی کھسک گئی ہے۔ تلسا کوئی دکھتی رگ چھوتی ہے تو ماں ہلکے سے گنگو آتی ہے، گھر لوٹتی گایوں کی طرح، اب کی لڑکا ہو جاتا تو چھٹی ہوتی۔ وہ پھر تلسا سے بھی کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اب تو جا، تیرے بچے بیٹھے ہوں گے، تیل کی کٹوری چارپائی کے خوب نیچے کھسکا دیجو، ورنہ صبح بچوں کے پیر سے ٹھوکر لگی تو تمام تیل ہی تیل، خراب بات۔ ماں آدھی چھوڑ دیتی ہے تو دیر تک کمرے میں بات تیرتی رہتی ہے، گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح۔ اچھی بات ہمیشہ پوری کہتے ہیں بڑے لوگ، خراب بات آدھی ہی، ایسا کیوں؟ کیا عورت کا بھاگیہ، چپی۔ ارے تین لڑکیاں، چپی۔ باہر ایک تارا خوب تیز چمک رہا ہے، کیا دھرو تارا ہوگا؟ بابو کہتے ہیں من لگا کر پڑھو گی تو تم بھی جو چاہو بن سکتی ہو، دھرو تارے کی طرح۔ لڑکا تو نہیں بن سکتی پر، میں ڈھٹائی سے کہتی ہوں تو بابو پتہ نہیں کیوں دھمکا دیتے ہیں کہ بڑوں کے منہ لگتی ہے، بڑے لوگوں کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی بہن کہتی ہے بڑے لوگوں کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی بات سب کھود کھود کر پوچھ لیتے ہیں، خود کچھ نہیں بتاتے۔ کوئی ہمیں کچھ نہیں بتاتا، یہاں خاص کر رات کو جب ہم سب سو جاتے ہیں تب یہاں بڑوں کی دنیا کھلتی ہے، جیسے بند پٹارا۔ میں جاگ کر سننا چاہتی ہوں پر ہر بار بیچ میں مجھے جانے کیوں نیند آ جاتی ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ کھانسی دباتے کون رو رہا ہے؟ چھوٹی موسی؟ کتے جتی عزت نہیں میری اس گھر میں، وہ ماں کے بغل میں کہیں کہہ رہی ہے۔ کہاں ہیں، کہاں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ماں کہہ رہی ہے کہ جی تو ان سب کا کلپتا ہے پر اسے نبھانا تو ہے ہی۔ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ نبھانا کیا ہوتا ہے ماں؟ میں صبح پوچھتی ہوں۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ وہ والا نبھانا جو چھوٹی موسی کو چاہیے۔ مجھے ایک تماچا پڑتا ہے، پھر دوسرا، پھر مامی بچاتی ہیں، چھوڑیے بھی بچہ ہے، بچہ بچہ نہیں پرکھن ہے۔ ماں کا پیٹ غصے سے تھرکتا ہے، चोरी से बड़ों की बात सुनती है, जाने क्या होगा इसका। तू भी बाहर हौदी के पास बैठी बड़ी बहन बीने फूलों को औंघाती कहती है, 100 बार कहा नहीं कि चबर चबर सवाल मत पूछ, पीट पीट के मार डालेंगे वो लोग तुझे एक दिन, अगर बहुत पूछेगी तो। मैं रोते रोते कहती हूँ, खूब पूछूंगी खूब पूछूंगी खूब पूछूंगी। तो जाके मर फिर, बड़ी बहन कहती है और समझदारी से नानी के गोपाल जी की माला गूंथने लगती है। ये मेरी लाखों की लक्ष्मी बेटी है, नानी उससे कहती है मुझे सुनाकर अक्सर। दोपहर में मैं छोटे बच्चों को खौफनाक डायनों और भूतों की कहानियां सुनाती हूँ जो नीचे वाले अखरोट के पेड़ में रहते हैं, और कहती हूँ कि चांदनी रात में ठीक 12 बजे उठकर वहां जाओ तो वे बच्चों के खून से नहाते दिखाई देंगे। नाक से बोलते हैं वो, नाक से। पहले पहल तो उनकी बोली भी समझ नहीं आती। बच्चे मेरे पीछे पीछे घर भर में घूमते हैं जैसे जादूगर के पीछे चूहे। दोपहर में बड़ी मामी और माँ हमें खट्टी मीठी गोलियां खाने को पैसे देकर भगा देती हैं। उनका कमरा अंधेरा है, कांचों पर हरा कागज चिपका है। मामी, माँ, मौसियाँ, नानी, सारे कमरे में औरतें ही औरतें पड़ी हैं, हर घड़ी कुछ ना कुछ खाती हुई। उनकी मुगदर जैसी बाहें, मोटी मोटी अधरंगी टांगें, धारीदार पेट। हमें क्यों कहा जाता है पैर फैलाकर मत बैठो, टांगे दिखती हैं, हैं, हैं? तुम सब गायों जैसी लगती हो, मैं औरतों से कहती हूँ, पर शायद किसी ने सुना नहीं। फर्श पर तकिया डाले पड़ी छोटी मौसी एक खट्टी गोली हमसे लेकर चूसती हैं और कहती हैं, हद हैं जीजा जी भी। अचानक कमरे में ठहाके फूट जाते हैं, कौन, क्यों, कैसे? मैं चारों तरफ उत्तर को ताकती हूँ, पर यहाँ हमारी किसी को परवाह नहीं। वो सब फिर अपनी बोली बोल रहे हैं। बाहर जाकर मैं खूब जोर से बाहर का दरवाजा पीटती हूँ। अब शायद माँ आकर कहेगी एक मुसीबत और, पर कोई भीतर से बाहर मेरी खबर लेने नहीं आता। हटो, सिर के इशारे से हरी की माँ कहती है। वह ट्रे में ढेरों चाय के गिलास लिए कमरे में जा रही है। हटो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, हटो। हरी की माँ की नाक मेंढक जैसी है और उसकी भौहें नाक के ऊपर जुड़ी हुई हैं। वह हंसती है तो मरे हुए चमगादड़ की तरह उसके गाल लटक जाते हैं। हटो ना, वह फिर कहती है। नहीं हटूंगी, मैं अड़ जाती हूँ। पहले कहो लड़कियां अच्छी होती हैं। हाँ हाँ, कह दिया, चलो हटो, हरी की माँ कहती है। नहीं, मैं कहती हूँ ठीक ठीक से कहो। क्या हो रहा है हरी की माँ? अंदर से मौसी की चिड़चिड़ी आवाज आती है। चाय के अगले साल लाओगी? हरी की माँ मोटी मोटी भौहों से मुझे बरसती है। ये मंजली लली भीतर नहीं, वह हंसती है तो उसकी मेंढक जैसी नाक फुदकती है, फुद फुद। अंदर माँ मेरा नाम लेकर कहती है कि जरूर वही कल्पा रही होगी उसे, मेरा प्राण खाने को जन्मी है लड़की। कोई कहता है ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए। देर तक घर के बाहर बैठी हुई हवा में उड़ती गौरैयों को देखती मैं सोचती हूँ, मैं गौरैया क्यों ना हुई। अच्छा, क्या माँ गौरैया भी चिड़ियों में लड़कियों को कम अच्छा मानती होगी? कहाँ गई, भीतर से किसी की आवाज मुझे ढूंढ रही है। मैं जानबूझकर दीवार की ओट हो जाती हूँ कि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। कभी नहीं, किसी भी तरह। कहीं से वो जादू की सुपारी मिल जाती जिसे मुंह में रखकर जब चाहो अलोप हो जाओ तो मजे ही मजे। रात को कहानी खत्म कर नानी कहती है कि अब जाओ तुम सब सोने। छोटी बहन सो गई है, उसे हरी की माँ गोद में भीतर ले जाती है। मैं नानी से पूछती हूँ, क्या मैं नानी के पास सो सकती हूँ? नानी का बदन गर्म और गुलगुला है। नानी की रजाई से इलायची लौंग की बास आती है। नानी के तकिए के नीचे एक टॉर्च रहती है, उसे लेकर बत्ती बुझने के बाद भी बाथरूम जाओ तो अंधेरे में पैर के अंगूठे में ठोकर नहीं लगती। मामा के सोते लड़के को पास खींच कर रजाई उड़ाती नानी कहती है, ना भैया, एक तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाता, फिर दो दो को मैं कहाँ सुलाऊंगी। तू जा अपनी माँ के पास। भला, कल फिर कहानी सुनाऊंगी। नानी की आवाज खुशामद से चुंधी चुंधी है, जैसा बरगलाते वक्त बड़े लोगों की हो जाती है। कमरे में बड़ी बहन बिना मेरी तरफ करवट लिए कहती है, सुला लिया तुम्हें? उसका स्वर गुस्से से कांप रहा है। घड़ी बोलती है, टिक टिक, माँ की नाक बज रही है, सुलाया तुम्हें, सुलाया तुम्हें, टिक टिक, खर खर। कहाँ हो रही लड़कियों, नानी हाथ में रोली की थाली लिए पीढ़े पर से पुकार रही है। नानी के सामने एक कढ़ाई में हलवा पड़ा है, थाली में ढेरों पूड़ियाँ। अष्टमी की सुबह है, नानी के आगे चटाई पड़ी है, आओ टीका लगवा लो। नानी आरती में कपूर जलाती है, आओ आरती कर दूं तुम्हारी। मेरी दोनों बहनें और मामा की सुंदर लड़कियां नानी के आगे फसकड़ा मारकर बैठ गई हैं। नानी उनके टीका अक्षत लगाती है, घंटी बजाती है, रेल के गार्ड की तरह, फिर शंख पू। मैं इंजन बनकर आंगन की मुंडेर पर भागती हूँ। कमरे में बास है, आरती कपूर की बास, हलवे की, घी की बास, फूलों की बास। दे दे पैसा कलकत्ता चल, पू पू पू। आजा बेटा टीका करा ले, तू तो मेरी कन्याकुमारी है ना। मैं कहती हूँ, नहीं मैं तो इंजन हूँ। मामा का लड़का ताली पीटता है, आहा जी इंजन, आहा जी इंजन। तभी डर मेरे पेट में मुट्ठी की तरह सख्त होता है। माँ मेरी ओर लड़खड़ाती सी आ रही है, क्रोध से उसका चेहरा भींचा हुआ है। मैं बनाती हूँ तुझे इंजन अभी इसी दम। पागल हो रही हो लली, पड़ोसन नानी माँ का हाथ पकड़कर मुझे आंखों से कहना मानने को कहती है। बच्चा है वो, कन्याकुमारी ठहरी, आज अष्टमी हुआ, देवी का दिन, आज के दिन कन्याकुमारी पर हाथ नहीं उठाना हुआ, शराब पाप लगता है। मैं धम्म से मुंडेर से नीचे कूदती हूँ। माँ रो रही है, इन्हें होंठ भींच कर लड़कियों को हलवा पूरी परसना चालू कर दिया है। जाना, चिड़चिड़ी मौसी कहती है, क्यों अपनी माँ को रुलाती है ऐसे में। जब तुम लोग लड़कियों को प्यार ही नहीं करते तो झूठ मूठ में उनकी पूजा क्यों करते हो। मेरी आवाज रुलाई से फटती है। गुस्से में मेरे मन में आता है कि आरती का जलता कपूर निगल कर अपने इस दगावाज गले को दाग दूं। क्यों, मैं फिर पूछना चाहती हूँ, पर रो पड़ने के डर से चुप हूँ। मैं रोना नहीं चाहती इनके सामने खासकर। हरी की माँ ताज्जुब से पंजा गाल पर टिका कर कहती है, माँ री माँ सुनो तो इसकी बात, लड़की हो के ऐसा गुस्सा। नानी लड़कियों को सवा सवा रुपया दे रही है, सवा रुपए में 20 खट्टी गोलियां एक साथ ली जा सकती हैं, आने में एक। इतना दीवार से कहकर नानी मेरी ओर भी रुपए के नोट में लिपटी चवन्नी बढ़ाती है। नानी के अंगूठे की नोक पर रोली का निशान खून का धब्बा जैसा लगता है। मैं दीवार की ओर पीछे हटती हूँ। मुझे नहीं चाहिए इन औरतों का हलवा पूरी टीका रुपया, मैं देवी नहीं बनूंगी, मैं चिल्लाती हूँ इतनी जोर से कि आंगन में बाजरा चुगते कबूतर पर फटफटाकर उड़ जाते हैं, ज्यों कहीं गोली चली हो।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।